अब जो हम पढ़ने लगे हैं ना, आप कह लीजिए कि बनी इसराइल की 40 साल तारीख है ये। वैसे तो बनी इसराइल का ताल्लुक जुड़ता है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से, राइट। लेकिन यहाँ आपको जितने भी वाक्यात अभी मिलेंगे, ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की कौम के कौन से दौर के हैं, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर और उसके इर्द गिर्द के वो वाक्यात हैं सारे। अल्लाह सुबहाना तआला दोबारा उसी मोहब्बत से पुकारते हैं, या बनी इसराइल अस्कुरु नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ए बनी इसराइल, ए बेटो याकूब के, याद करो मेरी वो नेमत जो तुम पर है। क्या है वो? वन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, मैंने तुमको फजीलत दी जहानों पे। आयत गुजरी पीछे, अल्हम्दुलिल्लाह। बार बार फजीलतों का जिक्र क्यों हो रहा है कि अभी संभल जाओ, अल्लाह ने तुम्हें बहुत नेमतें दी हैं, तो डोंट मिस यूज योर ब्लेसिंग्स, नेमतों को मिस यूज ना करो। नई बात आगे है, वत्तकु यौमन ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, और डर जाओ उस दिन से जिस दिन नहीं काम आएगा कोई नफ्स किसी नफ्स के कुछ भी। वला युकबलु मिनहा शफाअतुन, और उसकी सिफारिश भी कबूल नहीं की जाएगी। वला युखज़ु मिनहा अदलुन, इस पर दो लिख लीजिए, यानी पहला था ए ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन, बी लिखिए ला युकबलु मिनहा शफाअतुन, और सी लिखिए वला युखज़ु मिनहा अदलुन, और ना उससे कोई अदला बदला लिया जाएगा। वला हुम युनसरून, और ना वो मदद किए जाएंगे। इस एक आयत में अकीदे आखरत से मुतल्लिक 4 मुमकिना खराबियों का तذکرہ। बनी इसराइल का जो जवाल आया था, या बनी इसराइल में जो कमजोरियां आई थी, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? आखरत का खौफ चला गया था। अल्लाह ताला ने ऊपर नेमतों का तذکرہ किया, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को इतनी नेमत दी थी कि अगर ये चाहते तो पूरी दुनिया में अमन चैन कायम करते। इन्होंने अमन चैन कायम करने की बजाय दुनिया को हथियारों के तोहफे दिए, बेचैनियां दी, पूरी दुनिया के रिसोर्सेज अल्लाह ने इनको दिए। आज भी देखिए जरा इनकी नेमतें, जहानत में आ गए। मीडिया किसके कंट्रोल में, फाइनेंस किनके कंट्रोल में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किनके हाथों में, मूवीज किनकी अच्छी बनती हैं, इकोनॉमिक्स, फाइनेंसिंग, बैंकिंग सिस्टम, ये सब इसी कौम के तोहफे हैं। आला पाए के जर्नलिस्ट होते हैं ये, हुकूमत में आते हैं मुसख्खर कर जाते हैं लोगों को। तो जब इतना कुछ है तो क्या ये किंग मेकर्स नहीं बनेंगे? आज भी इस कौम की आदत है कि ये जहां जाते हैं वहां छा जाते हैं। प्लानिंग कितनी करते हैं, 100 100 साल की। आपको तक इसराइल नाम की जो स्टेट आज भी आबाद है, इसकी 100 साल पहले की प्लानिंग थी। इन्होंने हीब्रो यूनिवर्सिटी बनाई और उसमें अपने लोगों को तैयार किया, ऐसे जैसे हम कहें कि हम अपने इदारे में टीचर्स तैयार करेंगे और उनसे बच्चों को पढ़वाएंगे। क्यों भला? इसलिए कि फिर वो लोग ज्यादा बेहतर होते हैं जो आपके हाथों से चले होते हैं। इस वक्त इसराइल का निजाम चलाने वाला पूरा तबका इनकी अपनी हिब्रो यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है। यहां से आप देखिए कि इनकी प्लानिंग कितनी, कुव्वत इरादी कितनी, इनमें मामलात की समझ कितनी, जिसको आप कहना चाहते फील द पल्स, ये नफ्स देख लेते हैं, नफ्स शनास कौम है। सलाहियतें तो वो थी कि पूरी दुनिया आज अमन का गहवारा होती, लेकिन हुआ उलट। वजह जाती मुफादात पे इन्होंने कौमी मुफादात को कुर्बान कर दिया, ये नुकसान है। जब कोई अल्लाह की चुनी हुई कौम खुद गर्ज हो जाती है ना, मेरा फायदा जिसमें मुझे वो कानून बनाना है, मेरा फायदा होगा तो ये होगा, वो होगा तो उसका होगा, तो यकीन करें कि जुल्म की हद होती है। चंद दिन पहले किसी ने एक टैक्स भेजा कि अगर एटमी हमला हो तो क्या कुछ किया जाए। मैं पढ़ के परेशान कि ये क्यों आ गया। बाद में मुझे फिर उसके बाद पता चला कि बड़ा जंग का खतरा है अपने मुल्कों में कहीं, और ये और वो, उसकी पूरी उन्होंने लिखी थी कि जब आपके मुल्क पर एटमी हमला होगा तो ये होगा, थोड़ी देर बाद आपके फोन उड़ जाएंगे, आप धुआं बन जाएंगे। ये तो मैं उस वक्त भी यही बात सोच रही थी कि आखिर किन जहनों ने ये सारा कुछ बनाया, जिनको अल्लाह ने दुनिया की सलाहियतें दी हैं, क्या वो लोगों को जुल्म के साथ खत्म करना चाहेंगे? लेकिन आप देखिए ये सब कब होता है, जब वत तक यौमन का तकवा खत्म हो जाता है। इन्होंने अपनी मजहबी किताबों से आखरत के लफ्ज को निकाल दिया था। कुरान में आप पढ़ते हैं ना, जन्नातिन तजरी मिन तहती हल अनहार, तो ये कहते हैं लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, फलस्तीन को कहते हैं। इनकी किताबों में सारा फोकस दुनिया पे रह गया, रूहानियत चली गई। अल्लाह ताला ने इनको इस एक आयत में अकीदे आखरत की तमाम मुमकिन खराबियों को दूर करने की बातें बता दी। यानी एक सवाल लिखिए कि किताब पढ़ने के बावजूद असर क्यों नहीं नजर आता लोगों को अपने अंदर, तो उसकी वजह यह है, आखरत के असर को जीरो करने वाली ये चार ही बातें होती हैं। अव्वल तो आनी कोई नहीं कयामत, आ गई तो मेरी मदद किसी और ने आके कर देनी है, कोई मेरी सिफारिश कर देगा, मेरे बदले में कोई और आ जाएगा, कोई और बुजुर्ग हैं वो मेरी मदद कर जाएंगे। यही चीजें लोगों को ठंडा कर देती हैं। देखिए सीधी सी बात है, एक स्टूडेंट है, कहता है इम्तिहान अव्वल तो होना कोई नहीं, हो गया तो मेरी टीचर इतनी अच्छी है, उसने मेरे कोई भी नंबर नहीं होंगे तो मुझे पूरे नंबर दे देने, और इसी तरह से मेरा एग्जामिनर इतना अच्छा है कि उसने मुझे एक्स्ट्रा नंबर दे देने, कोई आएगा तो मुझे नकल दे देगा। तभी लोग गुनाहों से नहीं बचते। आखरत को जानते मानते हुए गुनाहों से ना बचना, उसकी वजह क्या है कि यकीन ही नहीं आता। बनी इसराइल का कल ये हाल था, आज हमारा ये हाल है। और नोट कीजिएगा कि कल जो बनी इसराइल का नुक्ता है नज़र अपने नबियों के साथ था ना, आज उम्मत मुस्लिमा का वो बुजुर्गों के साथ है। यही चारों चीज़ें आप सामने रख के देख लें, आपको आज उम्मत मुस्लिमा में दिखेंगी। नबी सल्लम की उम्मत ही है इसलिए हमारी मदद हो जाएगी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो पीर अब्दुल कादर जिलानी साहब आएंगे तो वो सिफारिश कर देंगे, और वो किसी चीज़ में अगर पीछे रह भी गए वक्त पे ना आ सके तो वो हजवेरी साहब हैं हमारे पास, और फिर ये नहीं है तो वो हमने जो चंदे मस्जिदों में दिए हैं तो वहाँ वाले हमारी मदद कर देंगे। ये झूठे भरोसे हैं, लिखिए झूठे भरोसों ने इनको काम करने से रोका हुआ था। ला युखज़ मिन्हु अदलुन, अदले का बदला नहीं होगा। देखिए दुनिया में इंसान नेकी करता है ना, एक बंदा छक्का लगाता है सारी टीम जीत जाती है, लोग इसी पे खुशफहमी में मुबतला है, वहां कोई टीम वर्क नहीं होगा, इनफरादी मुहासबा होगा। आज हमारे क्या गुमान है ये पूछिए खुद से। सबसे पहले हम कहते हैं अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, फिर हम कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश हो जाएगी, और तीसरे दर्जे पे हम कहते हैं बुजुर्ग हैं ना उनकी नियाजें देते जाओ, और अमल छोड़ दिया। और जब आखिरत का खौफ खत्म होता है ना तो याद रखिए अल्लाह का खौफ भी खत्म हो जाता है। इसीलिए इस आयत को यहाँ छोड़ा, आगे फिर आएगी इसी तरह की आयत, लेकिन मुझे आपको उस बात से अपने ऊपर लेना है कि हम किस दर्जे में, हम किस खेत में। पूरा कुरान आपको क़यामत की खबरें देता है, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मीही व अबी व साहिबतिही व बनी, सूरत अबस की आयत 37-34। अल्लाह ताला कहते हैं याद करो उस दिन को। सूरत लुकमान की आखिरी आयत है, या अय्युन्ना सुत्तकु रब्बकुम वख्शौ यौमन ला यज्ज़ी वालिदुन अन वलदिही, और आगे तक आयत है, बाप बेटे के काम नहीं आएगा, कोई हमसाया किसी के काम नहीं आएगा, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। सूरत इन्फितार आयत 9 में क्या आता है, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, कोई नफ्स किसी के काम नहीं आएगा, वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, सारे मामले अल्लाह के हाथ में होंगे। सूरह शुरा में आता फमा तनफहुम शफातु शाफीन, किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी। अब सवाल पैदा होता है कि ये सारी बातें यहाँ बयान करके अल्लाह ताला ने क्या हमें बिल्कुल इन सारी चीज़ों से बेनियाज कर दिया, तो ऐसा नहीं है। काम आएंगे नफ्स, कौन से नफ्स, फरमाइजा मात अल इंसान इनकते अमलहु, इंसान मर जाता है तो उसका नाम अमल मुनकते होगा, मगर इल्ला मिन सलास, तीन चीज़ें, नंबर एक इल्मुन जुनतफ़ बाता हु, इल्म जो दूसरों को सिखा गया, या सदकतुन जारियतुन, कोई सदका जारिया का काम कर गया, और या फिर वलदुन सालेहुन, ये तीन चीज़ें काम आएंगी। इसलिए मत सोचिए कि कोई नफ्स भी नहीं आना, हालांकि यहाँ देखें नफ्स भी वाहिद है, नफ्सिन भी वाहिद है, और शयन का लफ्ज थोड़ी सी की बात के लिए आता है कि ज़रा सा भी कोई काम नहीं आएगा, इसके बावजूद ये बात कर दी गई। वला युकबलु, अच्छा युकबल क्या है, मजहूल, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं पैसिव वॉइस। एक होता है कबूल होना, यहाँ क्या कबूल किया जाना, ये हमें मायूस कर रहा है। क्या पता चला क़यामत के दिन कोई किसी की सिफारिश कबूल नहीं करेगा। अच्छा यहाँ क्या लग रहा है कि लोग सिफारिश तो करेंगे लेकिन कबूल नहीं होगी, हालांकि कुरान पाक में ये बात बड़े क्लियरली पता चल गई कि सिफारिश कर ही नहीं सकेंगे। क्या आता है कुरान पाक में सूरत बकरा आयतुल कुर्सी में, आयतुल कुर्सी में क्या पढ़ते हैं, मंजल्लज़ी यशफ़ौ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो उसके सामने सिफारिश करे, मगर वही करेगा वही। तो इसी तरह सूरत नबा में क्या आता है, क़यामत के दिन यौम यकूम रूह वल मलाइकतु सफ़ा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहु रहमान व क़ाल सवाबा। तो क्या पता चला कि सिफारिश की कोई सूरत नहीं वहां बनेगी, तो फिर सिफारिश नहीं है, है मगर मशरूत शर्त के साथ है। आपके थोड़े से नंबर कम थे, किसी ने आके सिफारिश कर दी, चलो भाई ठीक है, फेल ना करो पास कर दो, चलो फर्स्ट ना लाओ सेकंड पे ले आओ, बात समझ आती है। लेकिन आपको चार लफ्ज़ नहीं पढ़ने आते, और कोई आपको किसी स्कूल या कॉलेज का प्रिंसिपल लगाने की सिफारिश करे, तो ये कभी भी नहीं होगा। इसीलिए आप देखिए कि आज हमारी उम्मत इन्हीं वजूहात से मुतमईन बैठी हुई है। क़यामत के दिन वहां लोग तड़पेंगे, फ़मा लना मिन शाफ़ईन वला सदीक़िन हमीम। आज ना तुम्हारा कोई सिफारशी है ना कोई गिला दोस्त है, आज यहाँ दुनिया में कर ले। फिर आप देखिए दुनिया में जब किसी काम में फंसते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, मेरे बदले कोई और चला जाए, मालिक के बदले गुलाम चला जाए, बाप के बदले बेटा चला जाए। कल आयु खज मिन हादलुन, अदले का बदला नहीं है। आप पढ़ेंगे सूरत मारिज में, लो यफ्तदी में नजाब यौम इज़िम भी बनी वसाहिबती ही, मेरी बीवी को ले लो, मेरे बेटे को ले लो, सारा कुछ लेके मेरी जान छुट जाए। नहीं, कल इन्नहा लज़ा नज़ात लिशा। तो क्या पता चला कि वहां नहीं बचेंगे, और आखिरी बात वला हुम युनसरून, कोई मदद भी नहीं दी जाएगी। बैठो अपने घर, तुम जो मर्जी अपने दिल में सोचकर आए थे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें नहीं देना। आप सोचिए, जिस इंसान के सर पर इतनी बड़ी आखिरत खड़ी हो, वो चैन से सो सकता है, आराम से सो सकता है? इंसान हर वक्त इस फिक्र में लगा रहे क़यामत के दिन क्या होगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों परेशान थे, क्यों उनके सीने से हंडिया की आवाज़ें आती थी? अबू बकर क्यों घर का सामान ला ला के फेंकते थे? उस्मान क्यों बार बार उठ के डोनेशंस देते थे? हजरत उस्मान क्यों इतने हया वाले थे? क्योंकि क़यामत का नज़र में रखना इंसान के आमाल को आसान कर देता है, और शिफात होगी इंशाल्लाह। ये मौजू आगे आते जाएंगे, आप पढ़ते जाएंगे, लेकिन असल बात यह है कि हम अपनी फिक्र करें, हम कहाँ खड़े हैं। बनी इसराइल को उनकी निस्बत और उनके मनसब का हवाला देकर उनका मुकाम याद दिलाया, और आज उम्मत मुस्लिमा को भी कह दिया, चाहे तुम प्यारे नबी की उम्मती हो, लेकिन अल्लाह के नबी कहकर गए कि जिसके अमल ने उसको पीछे छोड़ा, उसका नसब उसको आगे नहीं करेगा। तो फिर फिक्र सारी अपनी कर ले, आज मैं आप अपनी फिक्र करेंगे, कल अल्लाह ने चाहा तो हमारे लिए आसानियों के मामले हो जाएंगे, और अल्लाह ताला मुझे आपको इसकी तौफीक दे। आज हम कहाँ पड़े हुए हैं? क्या ये उम्मत मुस्लिमा लगता है आपको कि इसको आखिरत याद है, मरना याद है? फिर तो कोई एक गुना ना हो, फिर तो फमैया अमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरिन यरा और शर्रिन यरा का गम लग जाता है। बोलता है तो सोच के बोलता है बंदा, देखता है तो सोच के देखता है, सुनता है तो देख के सुनता है। तो बाशऊर ज़िंदगी होनी चाहिए इंसान की। वो एक अल्लामा इकबाल का ग़ालिबन शेर है ना, कि कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था कि जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे इस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। यानी हमारे बड़े वो थे, बड़े बड़े बादशाहों के ताज फेंक के चल पड़ते थे, तू भी तो उसी काफले का एक छोटा सा सितारा है, आज तुझे क्या हो गया? अगर आज मैं और आप अपने आप को देखें, तो ये बनी इसराइल की नहीं कहानी, ये हमारी कहानी है। कल अगर एक और किताब लिखी जाती इस कुरान के बाद, जो नहीं लिखी जाएगी, तो उसमें हाल क्या होना था? या उम्मत मोहम्मद, या उम्मत मोहम्मद अन्नी फद्दल तो कमल अल आलमीन। फिर हम रोते तो क्या रोते, सारी उम्मत को ऐसे लग रहा है दुनिया दुनिया का रोग लगा हुआ है। शायद लगता है यही है फिरदौस भी, और यही है सारी जन्नत की दूध की नहरें भी, और सब कुछ इधर है। तो आगे फिर बनी इसराइल की हिस्ट्री इंशाल्लाह इधर तिलावत सुनेंगे पहले।
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون